दिन भर 13 जनवरी सोमवार, मैं हूं आदर्श राठौर। नागरिकता कानून के विरोध में कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों की बैठक, आप, बीएसपी और टीएमसी ने बनाई दूरी। दिल्ली की जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से किया संवाद।
आपके स्टूडेंट्स पिट रहे थे, अगर उनको जेएनके हॉस्टल में परमिशन मिली फासेट की तो इसमें क्या बुराई थी?
एफआईआर करते हैं, सिक्योरिटी नहीं हो जाती बच्चे।
बीबीसी खजाने से आज सुने इंसान की उत्पत्ति और उसके विकास की कहानी।
जीवन का आरंभ सागर से हुआ था, आइए सागर के तट से ही हम अपनी कथा आरंभ करें।
खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, कमलेश मठेनी से। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में विपक्षी दलों की बैठक हुई। इस बैठक में बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना और तृणमूल कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। इस बैठक के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जेएनयू और जामिया यूनिवर्सिटी में छात्रों के विरोध को लेकर कहा कि उनकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को युवाओं से बात करने का साहस होना चाहिए। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री को चुनौती दी कि वह बिना पुलिस सुरक्षा के किसी भी विश्वविद्यालय में कर दिखाएं। वह बताएं कि देश के लिए क्या करने जा रहे हैं।
Instead of addressing this, instead of going to the students of India and saying, listen, this is what I'm going to do. This is how I'm going to give you jobs. This is how I'm going to set the economy right. He is doing the biggest disservice to this nation by dividing this nation and distracting.
ये थे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। केरल के सबरीमला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं को प्रवेश देने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजों की संविधान पीठ ने आज सुनवाई की। संविधान पीठ ने कहा कि वह 14 नवंबर के समीक्षा आदेश के सवालों पर ही सुनवाई करेगी। अदालत इस मामले पर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर रही है। अदालत ने कहा कि हम सबसे पहले समीक्षा आदेश में विचार के लिए भेजे गए सवालों को रीफ्रेम और स्पष्ट करेंगे। पूर्वी इंग्लैंड में शाही बैठक चल रही है। इस दौरान प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी ने उन खबरों की आलोचना की है जिनमें उनके रिश्तों में समस्याएं होने की बात कही गई थी। एक संयुक्त बयान में प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी ने ऐसी खबरों को अपमानजनक बताया। कुछ दिनों पहले प्रिंस हैरी ने घोषणा की थी कि वो और उनकी पत्नी मेगन राज परिवार के वरिष्ठ सदस्य की भूमिका से खुद को अलग कर रहे हैं और वो अब खुद को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए काम करेंगे। इसके बाद उनके पारिवारिक रिश्तों को लेकर खबरें आई थी जिसे उन्होंने गलत बताया है। प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी के बयान पर लेखक और डेली मेल के पत्रकार रॉबर्ट हार्डमैन कहते हैं,
I think it shows firstly the great sensitivity to getting the right atmosphere ahead of this meeting and also I think it shows
मुझे लगता है कि ये बैठक से पहले सही माहौल के लिए गहरी संवेदनशीलता दिखाता है। साथ ही ये दोनों भाइयों के रिश्ते की गहराई को भी दिखाता है। इसको समग्र रूप से देखें तो यह इस बैठक में टकराव की किसी भी भावना से बचने की कोशिश है। ये थे डेली मेल के पत्रकार रॉबर्ट हार्डमैन के शब्द। ईरान की राजधानी तेहरान में पुलिस प्रमुख हुसैन राहिमी का कहना है कि अधिकारियों को विरोध प्रदर्शनकारियों के प्रति संयम बरतने के आदेश दिए गए हैं। ईरान के स्वीकार करने के बाद कि उसने गलती से यूक्रेन का यात्री विमान गिरा दिया था, लोग वहां सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हुसैन राहिमी ने प्रदर्शनकारियों पर हथियारों के इस्तेमाल से भी इनकार किया है। ये बयान उन सोशल मीडिया वीडियोज के बाद आया है जिनमें गोली की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। ऑस्ट्रेलियाई राज्य न्यू साउथ वेल्स में फायर फाइटर्स ने कहा है कि उन्हें गॉस्पर्स पहाड़ में लगी विशाल आग के काबू में होने की उम्मीद है। सिडनी के पास स्थित गॉस्पर्स पहाड़ में लगभग पिछले तीन महीनों से आग लगी हुई है। इसके चलते 8,00,000 हेक्टेयर की राष्ट्रीय पार्क जमीन जल चुकी है। यहां रूरल फायर सर्विस के प्रमुख शेन फिट्ज़सिमन्स ने कहा कि बारिश और तापमान कम होने का मतलब है कि अगले हफ्ते तक उनके पास आग पर काबू पाने का मौका होगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया में आग से सबसे ज्यादा प्रभावित दूसरे राज्य विक्टोरिया के प्रीमियर डेनियल एंड्रयूज का कहना है कि आने वाले हफ्तों में आग का खतरा बढ़ सकता है। पाकिस्तान में लाहौर हाईकोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ को देशद्रोह केस में मौत की सजा सुनाने वाली विशेष अदालत को गैर कानूनी करार दे दिया है। कोर्ट की फुल बेंच ने फैसला आज परवेज मुशर्रफ की याचिका पर सुनाया। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी के कार्यक्रम दिन भर में आपका स्वागत है, मैं हूं आदर्श राठौर। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन रहे हैं। विपक्ष के 20 राजनीतिक दलों ने आज कांग्रेस के नेतृत्व में संसदीय परिसर में बैठक की और नागरिकता संशोधन कानून को वापस लेने की मांग की। लेकिन इस बैठक में दिल्ली की आम आदमी पार्टी, पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और मायावती की बहुजन समाज पार्टी शामिल नहीं हुई। अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा। दिलनवाज, कौन कौन सी पार्टियां जो थी इस बैठक में सम्मिलित हुई?
देखिए, 20 विपक्षी दल इसमें शामिल हुए हैं। एनसीपी के नेता शरद पवार इसमें थे, लोक जनशक्ति दल के नेता शरद यादव यहाँ पे थे, वामपंथी नेता भी इस पार्टी में इस बैठक में शामिल थे। जैसे विपक्ष की जब भी बैठक होती है ये दल एक साथ आते रहे हैं, लेकिन इस बार गौर करने वाली बात यह है, जैसा आपने बताया, बहुजन समाज पार्टी इसमें नहीं थी, दिल्ली की आम आदमी पार्टी इसमें नहीं थी, और तृणमूल कांग्रेस जो विपक्ष की एक अहम सहयोगी है और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ एक मजबूत आवाज़ बन के उभरी है, उसके नेता इसमें शामिल नहीं थी। पार्टी ने इस बैठक का बायकॉट किया था।
जी दिलनवाज, ये जब ये नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे हैं ये दल, लेकिन इस पार्टी में ये नहीं आए, तो क्या वजह?
देखिए, इसकी वजह पूरी तरीके से राजनीतिक है। दिल्ली में भी चुनाव होने वाले हैं 8 फरवरी को ही, तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ नहीं दिखना चाहती होगी। वहीं बहुजन समाज पार्टी जो है नाराज़ है कांग्रेस के रवैये से मध्य प्रदेश और राजस्थान में, जहां पार्टी ने जो है बसपा के विधायकों को अपनी ओर खींचने की कोशिश की है। थोड़ी देर पहले मैंने बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता सुधींद्र भदौरिया से बात की और उनका भी बिल्कुल यही कहना था, सुनते हैं।
हम उसके पक्ष में थोड़े हैं, हमने तो विरोध किया और पार्लियामेंट में भी विरोध किया, बाहर भी विरोध किया, पर ये विपक्ष आवाज एकमात्र कांग्रेस है, अलग अलग आवाजें हैं। कांग्रेस के ये रवैये से हम इसलिए, जिस प्रकार से लोग ये एनआरसी वगैरह से नाखुश हैं, उसी प्रकार हम कांग्रेस के भी इस रवैये से नाखुश हैं। वो हमारी पार्टी को तोड़ने, वो दलितों की पार्टी, इन्होंने ये कांग्रेस पार्टी का पुराना रवैया है, इन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को 2-2 बार चुनाव हरवाया, ये एक इनकी जो संकीर्ण मानसिकता है इससे ऊपर नहीं उठना चाहते।
देखिए आदर्श, ये जो बैठक थी इसका सबसे अहम जो प्रस्ताव है वो ये है कि बैठक इसमें कहा गया है कि जिन मुख्यमंत्रियों ने अपने प्रदेशों में प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को ना लागू करने की बात की है, वो जो नागरिकता जनसंख्या रजिस्टर है NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, उसकी कार्रवाई को रोके, तो ऐसा कहा गया है इस बैठक में। इसके अलावा जो सोनिया गांधी हैं कांग्रेस के नेता, उन्होंने तीखा हमला बोला है अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर और कहा है कि वो देश को बांट रहे हैं।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिलनवाज पाशा। बता रहे थे कि आज संसदीय परिसर में कांग्रेस के नेतृत्व में नागरिकता संशोधन कानून को वापस लेने की मांग करते हुए विपक्षी दलों ने जो बैठक की उसकी जानकारी दे रहे थे। आज दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के दौरान 15 दिसंबर को जामिया कैंपस में पुलिस की जो कार्रवाई हुई थी उसका विरोध करते हुए छात्र पुलिस पर FIR की मांग कर रहे थे। उनका कहना है कि जब तक पुलिस के खिलाफ FIR नहीं होती तब तक वो परीक्षाएं नहीं देंगे। उनके विरोध प्रदर्शन को देखते हुए यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर नजमा अख्तर सामने आई और छात्रों के सवालों के जवाब भी दिए। क्या बातचीत हुई उनके बीच, जानकारी दे रही हैं BBC संवाददाता गुरप्रीत कौर।
आपके स्टूडेंट्स पिट रहे थे, अगर उनको जेएन के हॉस्टल में परमिशन मिली फर्स्ट एड की तो इसमें क्या बुराई थी? मैम, दिस इज ट्रू एंड द सेकंड क्वेश्चन इज सिक्योरिटी। मैम, आपने बोला सिक्योरिटी डबल कर दी गई है, तो फिर लास्ट मिनट पे हॉस्टल में आके क्यों बोला जाता है कि हॉस्टल वगैरह करिए, हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे।
15 दिसंबर को जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पुलिस कार्रवाई को लेकर आज छात्रों ने वाइस चांसलर कार्यालय का घेराव किया। VC चुप्पी तोड़ों के नारों के बीच यूनिवर्सिटी की VC नजमा अख्तर सामने आई और छात्रों से बातचीत की। छात्र सवाल पूछते गए, नजमा अपने हिसाब से जवाब देती गईं। छात्रों की मुख्य मांग थी कि पुलिस पर FIR की जाए।
आगे हमारे लिए क्या सिक्योरिटी है, क्या होगा?
इस पर जामिया की वाइस चांसलर नजमा ने कहा कि पुलिस के एक्शन के खिलाफ जामिया प्रशासन कोर्ट जाएगा।
FIR करते ही सिक्योरिटी नहीं हो जाते बच्चे, तुम्हारा कुछ कसूर नहीं था, कुछ नहीं था। देखिए, हम लोग की तरफ से जो कुछ भी हो सकता है सब कर रहे हैं।
उनका कहना था कि पुलिस उनकी FIR की दरख्वास्त को रिसीव नहीं कर रही है। VC के इस जवाब से छात्र संतुष्ट नहीं हुए। उनका कहना था कि ये बात 15 दिन पहले भी की गई थी।
बोला था कि हम लोग उस टाइम कोर्ट में जा रहे हैं और मैम अभी बोल रही है कि अब हम लोग कोर्ट में जाएंगे। 15 दिन पहले हमने झूठ बोला था।
छात्रों ने VC से पूछा कि पुलिस के कैंपस के अंदर घुसने को लेकर उन्होंने मीडिया के सवालों का सीधा जवाब क्यों नहीं दिया।
जब मीडिया में आपसे सवाल हो रहा था कि रिस्पांसिबल कौन है, तो आपने दो बार क्यों बुलाए?
इस पर वीसी का जवाब सुनिए।
पूरा इंटरव्यू दिखाओ। नहीं, पूरा का पूरा दिखाएगा तभी ये डिस्टॉर्टेड दिखा रहा है। नहीं, नहीं।
वाइस चांसलर और छात्रों के बीच सवाल जवाब करीब एक घंटे चले। जामिया के छात्र पुलिस के खिलाफ तुरंत एफआईआर कराने की जिद पर अड़े रहे, मगर वीसी ने कहा कि तारीख ना पूछें।
उसे डेट पूछिए, मैंने आज कह दिया तो कह दिया, अब हो गया रहेगा।
वीसी ने हॉस्टलों की सुरक्षा से जुड़े सवालों का जवाब भी दिया। एक छात्र ने जब नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी NRC पर जामिया प्रशासन का रुख जानना चाहा, तो वीसी ने कहा कि छात्र सिर्फ यूनिवर्सिटी परीक्षाओं और पढ़ाई लिखाई की बातें करें।
आप मुझसे यूनिवर्सिटी की बातें करें, इम्तिहान की बातें करें, जो आपकी जरूरत है।
छात्र वीसी की बातों से संतुष्ट नहीं हुए और धरना जारी रखने पर अड़े रहे।
जामिया के छात्रों और वाइस चांसलर के बीच हुई बातचीत की जानकारी दे रही थीं गुरप्रीत कौर। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज से पुलिस कमिश्नर व्यवस्था को लागू कर दिया है। कैबिनेट की बैठक में ये फैसला हुआ और फिलहाल इसे राजधानी लखनऊ और नोएडा में लागू किया जाएगा। अन्य जिलों में लागू करने के बारे में बाद में विचार होगा। कमिश्नर प्रणाली लागू होने से इन जिलों में तमाम प्रशासनिक काम भी पुलिस कमिश्नर को मिल सकेंगे। सुनिए लखनऊ से समीरात्मज मिश्र की ये रिपोर्ट।
लंबे इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली से सटे जिला गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा और प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था को मंजूरी प्रदान कर दी। यूपी कैबिनेट से प्रस्ताव पर मुहर लगते ही ये सूचना देने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया के सामने आए। उनके साथ दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव गृह और DGP भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया।
पिछले 50 वर्षों से बेहतर पुलिसिंग के लिए, स्मार्ट पुलिसिंग के लिए, कानून व्यवस्था के सुदृढ़ और सुरक्षा की बेहतर स्थिति के लिए जो एक मांग उत्तर प्रदेश के अंदर की जा रही थी पुलिस आयुक्त प्रणाली की, वजह बताते हुए प्रसन्नता है कि आज हमारी कैबिनेट ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ और प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में विख्यात नोएडा, इन दोनों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का अभी यह प्रस्ताव पास किया है।
पिछले दिनों यूपी पुलिस में उच्चाधिकारियों के स्तर पर आए मतभेद और भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद कई पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए। नोएडा के SSP को निलंबित भी किया गया। उसके बाद से ही ये चर्चा जोर पकड़ने लगी थी कि राज्य सरकार लंबे समय से लंबित कमिश्नर प्रणाली को लागू करने की शुरुआत कर सकती है। आज सरकार ने ये फैसला कर ही लिया। फिलहाल दो सबसे महत्वपूर्ण जिलों से इसकी शुरुआत की जा रही है, लेकिन इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है, खासकर उन जिलों में जहां करीब 20 लाख की आबादी है। देश के 15 राज्यों के 71 जिलों में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू है और यूपी में भी लंबे समय से इसकी मांग होती रही है। राज्य के DGP रह चुके विक्रम सिंह कहते हैं,
आजादी के उपरांत तमाम प्रयास हुए। 1977 में जब श्री SVM त्रिपाठी और वासुदेव पंजानी जी का नाम चला था, नहीं हो पाया। धर्मवीर आयोग ने इसकी प्रबल संस्तुति की, नहीं हो पाया। तमाम आयोगों ने इसकी संस्तुति की, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि निहित स्वार्थ नहीं चाहते थे कि जनहित में ये कार्य हो। इसके शुभारंभ से ये जनहित का एक अभिनव प्रयोग होगा और जनता के लिए सारी सेवाएं, जैसे शस्त्र लाइसेंस से लेकर के जो भी पुलिस के संबंध में कार्रवाई होती थी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अधिकार प्राप्त होने के उपरांत वो समस्त अधिकार पुलिस अधिकारियों में हो जाएंगे, जिससे कि जन सेवा के एक नया आयाम और त्वरित और पारदर्शी तरीके से ये सेवाएं संभव हो पाएंगी।
सरकार ने लखनऊ में सुजीत पांडे और नोएडा में आलोक सिंह की बतौर पुलिस आयुक्त नियुक्ति भी कर दी है और इन दोनों ही जिलों में संयुक्त आयुक्त और उप आयुक्त स्तर के अधिकारियों की भी नियुक्ति कर दी गई है। बताया जा रहा है कि कमिश्नर प्रणाली लागू करने से कानून व्यवस्था को संभालने में आसानी होगी, क्योंकि पुलिस से संबंधित तमाम अधिकार और कार्य जिला मजिस्ट्रेट की बजाय सीधे पुलिस आयुक्त के हाथ में आ जाएंगे। इन अधिकारों में धारा 144 या कर्फ्यू लागू करने का अधिकार, दंगे जैसी स्थिति में लाठी चार्ज या फायरिंग करने का अधिकार, या फिर शांति भंग जैसी धाराओं में अभियुक्त को जेल भेजने या फिर उन्हें जमानत देने जैसे प्रशासनिक अधिकार पुलिस के पास आ जाते हैं। हालांकि इस सिस्टम को लेकर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के बीच अक्सर तनातनी की स्थिति भी रहती है, जिसकी वजह से इसकी आलोचना भी होती है। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
अब बात पाकिस्तान की, जहां लाहौर हाईकोर्ट ने आज उस स्पेशल कोर्ट को असंवैधानिक ठहरा दिया है जिसने पिछले महीने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को मौत की सजा सुनाई थी। इसी पर सुनिए पाकिस्तान से वसतुल्ला खान की डायरी।
जब पिछले महीने एक विशेष अदालत ने भूतपूर्व फौजी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को मृत्यु दंड सुनाया तो जो पानी पी रहा था उसे उच्छू लग गया, जो चाय सुड़क रहा था उसके हाथ से प्याली छूट गई, जो भोजना रहा था उसके हाथ से निवाला ज़मीन पर गिर पड़ा, और जिसने ये खबर ड्राइव करते करते रेडियो पे सुनी उसने पगला के गाड़ी फुटपाथ पे चढ़ा दी। बात ही कुछ ऐसी थी, जो 73 वर्ष में कभी नहीं हुआ वो अब कैसे हो सकता है। फांसी तो आतंकवाद के आरोपी चढ़ते हैं, राजनेता चढ़ते हैं, इनकलाबी चढ़ते हैं। एक जर्नल को फांसी की सज़ा और वो भी संविधान तोड़ने के अपराध में, और कौन सा संविधान जिसके बारे में खुद परवेज मुशर्रफ कह चुके हैं कि इस पतली सी किताब की औकात क्या है, और इनसे पिछले फौजी सदर ज़ियाउल हक कह चुके हैं कि संविधान, अरे वो 12 पन्नों की किताब, उसे तो मैं जब चाहे फाड़ दूं और सियासतदान फिर भी मेरे पीछे दुम हिलाते आए। हालांकि जितने खतरनाक मुकदमे परवेज मुशर्रफ पे बनाए गए उतने खतरनाक मुकदमे तो जुल्फकार अली भुट्टो पे भी नहीं थे। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ सिर्फ संविधान तोड़ने का मुकदमा थोड़ी था कि जिसकी सज़ा मौत है, बल्कि बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल का मुकदमा भी था और बलोच सरदार अकबर बुकटी को मार डालने का मुकदमा भी। लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो संविधान बनाने और कातिल ना होने के बावजूद फांसी चढ़ गया और परवेज मुशर्रफ साहब बरी हो गए। क्या कमाल बात है, परवेज मुशर्रफ पे संविधान से गद्दारी का मुकदमा 6 वर्ष चला, 4 जज बदले गए, परवेज मुशर्रफ सिर्फ एक बार अदालत में पेश हुए और फिर कभी नहीं आए बल्कि पाकिस्तान से ही चले गए। परवेज मुशर्रफ पे संविधान से गद्दारी का मुकदमा भूतपूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के ज़माने में कायम हुआ था, जब स्पेशल कोर्ट ने पिछले महीने परवेज मुशर्रफ को फांसी पे लटकाने की सज़ा सुनाई तो नवाज शरीफ या उनके भाई शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ की सपुत्री मरियम नवाज ने इस फैसले के पक्ष में या खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। और आज जब लाहौर हाई कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट को ही गैर कानूनी करार दे दिया तब भी शरीफ खानदान के मुंह पे टेप लगी हुई है। तो क्या इमरान खान की सरकार हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी? ये बात मैंने अपने सबसे खरे मित्र अब्दुल्ला पान सिगरेट वाले से पूछी। कहने लगा, अमा खान साहब घास चर गए हो क्या, जर्नलिस्ट हो के मुझसे ऐसे सवालात पूछते हो? चाहे अपने हक में तुम कई लाख दलीलें ले आओ, जिसके हाथ में लाठी है उसका चांद सितारा है। ये शेर सुनाने के बाद अब्दुल्ला ने मुझे तंबाकू वाला पान देते हुए कहा, इसे खाओ खान साहब, मुंह कुछ देर बंद रहेगा, फिर एक और खा लेना।
आप सुन रहे थे पाकिस्तान से वसतुल्ला खान की डायरी। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं 31 जनवरी से बीबीसी हिंदी सेवा के रेडियो प्रसारण बंद हो रहे हैं, इसलिए हम आजकल आपको अपने खजाने से प्रसारित कुछ ऐसी श्रृंखलाओं की झलकियां सुना रहे हैं जिनकी यादें आज भी आपके जहन में ताज़ा हैं। आज सुनिए इंसान की उत्पत्ति और उसके विकास की कहानी, मनुष्य का उत्कर्ष की झलकी। ये सीरीज प्रोफेसर जैकब ब्रुनस्की की लिखी पुस्तक द असेंट ऑफ मैन पर आधारित है। 13 एपिसोड की इस सीरीज का प्रसारण अप्रैल 1976 से शुरू हुआ था। प्रस्तुत करता है कैलाश बुधवार।
दीस प्रोग्राम्स और एसेज आर ए जर्नी थ्रू इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री।
मनुष्य की उपलब्धियों के प्रमुख तीर्थों से होकर प्रोफेसर ब्रुनस्की की इतिहास यात्रा।
जीवन का आरंभ सागर से हुआ था। आइए सागर के तट से ही हम अपनी कथा आरंभ करें। पहाड़ों और जंगलों के किनारे रहने वालों की ही तरह समुद्र के किनारे रहने वाले भी अपने पड़ोसी जीव जंतुओं के क्रियाकलापों की विचित्र कथाएं बताते हैं। कैलिफोर्निया में समुद्र तट पर पहुंचने वाले बताते हैं कि वहां के आदिवासियों का ये कथन सच है कि पूर्णमासी की रात वहां मछलियां जल से निकलकर तट पर नाचती हैं। ये सचमुच सच है। होता यह है कि वहां के जल में रहने वाली एक किस्म की मछली बाहर आकर किनारे की बालू में अंडे देती है और उसकी संगी मछली अंडों के गिर्द घूम घूम कर उन्हें सेती है। आप पूछेंगे, पूर्णमासी की ही रात क्यों? इसलिए क्योंकि इस तरह सेते हुए अंडों को मछली बनने में ज्वार से 9-10 दिन की मोहलत मिल जाती है और फिर ठीक समय पर ज्वार की लहरें आकर उन्हें समुद्र में बहा ले जाती हैं।
Every landscape in the world is full of these exact and beautiful adaptations by which an animal fits into its environment like one cogwheel into another.
लाखों करोड़ों वर्ष के विकास क्रम ने इन मछलियों को इस तरह ढाल दिया है कि अपना वंश बढ़ाने के लिए वो प्रकृति के बीच समय और स्थान के ठीक उस बिंदु पर मौजूद रहें, उसके अनुकूल अपने को ढाल लें। हर जगह के हर तरह के जीव ने अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने आप को इसी तरह प्रकृति के अनुकूल ढाला है, पर मनुष्य शेष सब जीवों से बिल्कुल अलग है। प्रकृति उसे किसी खास तरह के सांचे में ढलने को विवश नहीं कर पाई।
अन्य जीवों के विपरीत आदमी की कल्पना शक्ति ने, जीवित रहने की उसकी इच्छा शक्ति ने, शारीरिक सहन शक्ति और मानसिक जटिलताओं की गुत्थी सुलझा लेने की उसकी क्षमता ने उसे मजबूर नहीं रहने दिया कि वो चुपचाप प्रकृति का आदेश शिरोधारी करता चले। उसने प्रकृति को अपने अनुकूल ढालना शुरू कर दिया। जिन खोजों और आविष्कारों के बल पर उसने प्रकृति का रुख अपने अनुकूल मोड़ लिया, वो विकास का एक अलग क्रम है। जीव जंतुओं के विकास क्रम से अलग सांस्कृतिक विकास का क्रम, यही वो सीढ़ियां हैं जो मनुष्य जाति ने पार की हैं। किंतु इसका ये अर्थ नहीं कि मनुष्य को शारीरिक विकास के क्रम से होकर गुजरना नहीं पड़ा। डार्विन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्राणियों के उद्गम में इस प्रक्रिया को समझाने की चेष्टा की है। प्राणियों के विकास की बात हम आज भी स्वीकार करते हैं, यद्यपि डार्विन के सिद्धांत अब फिर से नई कसौटियों पर परखे जा रहे हैं। तो आइए कहानी शुरू से शुरू की जाए। हम जहां हैं वहां पहुंचे कैसे? अब तक ये सिद्धांत लगभग स्वीकार किया जा चुका है कि मनुष्य का उद्गम अफ्रीका में भूमध्य रेखा के निकट हुआ था, अब से कोई 40 लाख साल पहले।
इथियोपिया में ओमो नदी के निकट रूडोल्फ झील से लगी विशाल रिफ्ट घाटी, यहीं भूमध्य रेखा पर हम मनुष्य के जन्म स्थान के बीच खड़े हैं।
वहां धरती में इस तरह की परतें दबी हुई हैं कि अब से 40 लाख साल पहले की, 30 लाख साल पहले की, 20 लाख साल पहले की सतहें इस तरह देखी जा सकती हैं जैसे किसी चट्टान की कग्गर से दिखने वाली उसकी भीतरी तहें।
अफ्रीका के इस प्रदेश में हमें प्राचीन काल के पशुओं के अवशेष भी मिले हैं और मनुष्य के आरंभिक पूर्वज के भी।
यहीं अफ्रीका के भूमध्य रेखा के इलाके में अब से 40 लाख साल पहले दक्षिणी वनमानुष का विकास शुरू हुआ था, उस रूप में जो आज के मनुष्य के पूर्वज के सबसे निकट माना जा सकता है, जिसे होमो सैपियन कहते हैं। अब से 30 लाख वर्ष पहले अफ्रीका की भूमि पर हमें अपने असली पूर्वज के विचरने के चिन्ह मिलते हैं। अभी इसकी लंबाई मुश्किल से 4 फीट थी। अपने भीमकाय संबंधी से इसकी शरीर रचना, इसके दांत और जबड़े कुछ कोमल थे, ये सीधा तन कर चलता था। इसके बाद अफ्रीका में इसी के वंशज के अवशेष मिल चुके हैं, 20 लाख साल पहले के अवशेष।
इस पूर्वज ने पत्थर के औजार बनाने शुरू कर दिए। तोड़े हुए पत्थर से लकड़ी और मांस काटना आसान लगने लगा। पत्थर से पत्थर टकराकर बनाया गया ये औजार अगले 10 लाख वर्ष तक आदमी के काम आता रहा।
केवल आदमी ही इस विशाल धरती के लंबे चौड़े इतिहास में ऐसा जीव हुआ है जिसने जो रचा है उसके निशान छोड़े हैं।
आदमी की कल्पना शक्ति के प्रमाण उन गुफाओं में आज भी सुरक्षित बचे हुए हैं जिनमें बर्फ से बचने के लिए उसने अपना बसेरा बनाया था और जहां से अपने लिए उस समय के एकमात्र संभव भोजन मांस की तलाश में वो निकला करता था। गुफाओं में उस समय बनाए अपने इन चित्रों में उसने ये कहानी अंकित की है।
उस काल के ये गुफा चित्र मनुष्य की बुद्धि और इच्छा शक्ति के विकास की गवाही देते हैं।
बीबीसी के खजाने से आप सुन रहे थे मनुष्य का उत्कर्ष की झलकी और अब आपकी चिट्ठियां।
आपकी राय, आपकी राय के साथ मैं हूँ सूर्यांशी पांडे और जैसा कि सिलसिला जारी है, प्रसारण के बंद होने की घोषणा के बाद से हम आपके खतों का जवाब नहीं देते बल्कि आपके जज्बातों को आपके सामने रखते हैं। तो खत की पहली शुरुआत राहुल कुमार यादव के खत से करते हैं जो सिवान बिहार से लिखते हैं और वो कहते हैं, मैं ये ईमेल अपने पापा की तरफ से लिख रहा हूँ। मैं 1995 से बीबीसी सुनता आ रहा हूँ। बीबीसी रेडियो का प्रसारण बंद होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा नुकसान है। ऐसा लग रहा है कि मानो अपने घर का कोई सदस्य हमेशा के लिए घर से जा रहा हो। अब लाखों श्रोताओं, दूर दराज के किसानों और ऐसे कई लोगों को सच्ची और विश्वसनीय खबर प्राप्त करने के लिए किसका सहारा होगा। सतना मध्य प्रदेश से डीके विश्वकर्मा लिखते हैं, बीबीसी हिंदी सेवा बंद करना करोड़ों हिंदी भाषी लोगों को दरकिनार करना है। दुनिया में चाइनीज भाषा के बाद सबसे ज्यादा हिंदी भाषी लोगों की संख्या है। मैं रेलवे से रिटायर्ड ट्रेन गार्ड हूँ। सन 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय बीबीसी सुनना शुरू किया था जो आज तक जारी है, बल्कि दिनचर्या में शामिल है। ड्यूटी के दौरान भी या रनिंग रूम में भी विश्राम करने के दौरान बीबीसी सुनना जारी रहा। चलिए, हमारी अर्जी आपकी मर्जी, कुछ मजबूरियां रही होंगी आपकी भी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं हो जाता। ईमेल के जरिए रोहित राज लिखते हैं, मैं रोहित राज बिहार से, मेरे नाना जी रोज बीबीसी सुना करते हैं। अपना सारा काम छोड़कर वो रेडियो सुनते हैं। नाना जी अकेले रहते हैं, ना ही उनके पास टीवी है ना स्मार्टफोन, तो जब बीबीसी रेडियो बंद हो जाएगा तो वो लाचार हो जाएंगे। मेरी विनती है कि बीबीसी रेडियो का प्रोग्राम बंद ना हो। हरिओम खुन लिखते हैं, कृपया बीबीसी हिंदी रेडियो का प्रसारण बंद ना करें। मैं रोज सुनता हूँ, आपसे अनुरोध करता हूँ कि बीबीसी रेडियो को बंद ना करें। राहुल यादव सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से लिखते हैं, मैं बीबीसी बचपन से सुन रहा हूँ, तब रविवार को बच्चों का कार्यक्रम भी आता था। कारण मेरे पिताजी बीबीसी के परम श्रोता थे। सुबह 6:30 बजे, शाम 7:30 रोज रेडियो उनके साथ ही रहता था और रात 10:30 बजे भी कभी कभी सुनते थे। पिताजी अब नहीं है और बीबीसी अपना बुढ़ापा काट रहा है। बीबीसी का नाम आते ही पिताजी का चेहरा मेरे सामने आ जाता है, इसलिए बीबीसी मेरे पारिवारिक इतिहास में भी है। नरसिंगा राम बाड़मेर राजस्थान से लिखते हैं, सर प्लीज बीबीसी हिंदी सेवा को बंद ना करें। मैं प्रोग्राम 2013 से सुन रहा हूं और मैं अभी शिक्षा के क्षेत्र की बात करूं तो मैं बीएड कर रहा हूं और साथ में कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी कर रहा हूं। मुझे आपकी न्यूज को सुनकर काफी हेल्प मिलती है और मैं आपका कार्यक्रम रोजाना सुन रहा हूं। विजय कुमार लिखते हैं, आपका और मेरा सुखद साथ लगभग 22 सालों का रहा और आपसे मेरी दोस्ती दादाजी के जरिए हुई थी, जब मेरे पूरे गांव में एक ही रेडियो हुआ करता था जिसे सुनने के लिए कम से कम 20 से 25 लोग रोज रेडियो के सामने बैठ जाया करते थे। अब 2020 में वक्त बदल गया है, न जाने किसकी नजर लगी कि आप मुझे छोड़कर जा रहे हो। अब मुझे कोई यह बताए कि इस फेक न्यूज के जमाने में किसका भरोसा करूं।
तो आप हमें भी चिट्ठियां लिख सकते हैं। हमारा पता है बीबीसी हिंदी सर्विस, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035-3035, नई दिल्ली 110003। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है hindi.letters@bbc.co.uk। तो श्रोताओं, आज दिन भर में इतना ही। स्टूडियो संभाला हमारे सहयोगी शाकिर आलम ने। कल शाम 7:30 बजे फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक आप bbchindi.com के साथ जुड़े रहिए। आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ इजाजत दें। नमस्कार, शुभ रात्रि।